मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 3 अप्रैल 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के अपने इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी से करने जा रहा हूं। कहानी छोटी है लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत सरल है लेकिन बहुत जबरदस्त रूप से संदेशों से भरी हुई कहानी है। शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी और हम लोगों के दौर में ये कहानी बड़ी प्रचलित भी थी। और चूंकि मैं गांव में रहा हूं और जब भी देखिए मैं गांव की बात करता हूं तो इसे आप 1965 से 1975 तक का गांव समझें, है ना। यही मेरा वह दौर रहा है जब गांव की स्मृतियां मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से रची बसी हुई हैं। तो चूंकि गांव में आप जानते हैं कि बहुत ही सामुदायिक किस्म का जीवन होता है, मतलब मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब हमारे गांव के जमींदार की लड़कियों की शादी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गांव की लड़की की शादी हो रही है और जमींदार के यहाँ हर व्यक्ति उस शादी में अपने अपने ढंग से योगदान दे रहा था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरी बुआ की शादी हो रही थी तब भी गांव वालों का बिल्कुल यही रुख था कि जिसके पास सब्जियां थी वो फ्री में सब्जियां पहुंचा रहा था, जो मेहनत कर सकता था वो फ्री में आकर के मेहनत कर रहा था, जिनके पास दूध था वो दूध देते थे, जिनके पास घी था वो घी देते थे। ऐसा लगता था कि ये किसी व्यक्ति की लड़की की शादी न होकर के गांव की लड़की की शादी है। तो ये हमारे 1965 से 1975 तक के गांव थे जिसे मैंने जिया है, जिसे मैंने अनुभव के स्तर पर बहुत गहरे रूप में अपने अंदर उतारा भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो इनफैक्ट इसी तरह की कहानियों में से एक है। हो सकता है कि आज की नई पीढ़ी को यह कहानी कहानी जैसी लगे लेकिन सच यह है कि यह कहानी कहानी होने के बावजूद भी एक सच्चाई है। दोस्तों कहानी यह है कि एक गांव के राजा थे, आप शहर के राजा या क्षेत्र के राजा कह लीजिए या गांव के जमींदार जो भी कहना चाहें, चलिए हम राजा की बात करते हैं। एक राजा थे और राजा की लड़की की शादी थी तो राजा को यह लगता था कि उनकी प्रजा जो है बहुत ज्यादा उन्हें चाहती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है और खासकर जिस लड़की की शादी हो रही है वो लड़की तो बिल्कुल यहां के सभी लोगों की जबरदस्त रूप से चहेती है, राजा को यह बात लगती थी। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि भाई मेरी लड़की की शादी है और इसमें पूरा गांव उत्साह से शामिल हो रहा है और मुझे लगता है कि सच में ये गांव के लोग मुझे कितना ज्यादा चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि राजा महाराज ये बहुत अच्छा मौका है जबकि इसकी परख कर लेनी चाहिए, हमें एक अच्छा अवसर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए परख कर लेते हैं। तो जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात की मुनादी कराई यानी कि घोषणा कराई कि चूंकि राजा की लड़की की शादी है और राजा की लड़की की शादी में जो भी अपना अपना योगदान देना चाहते हैं वो अपना अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। तो उन्होंने अलग अलग बना दिए कि जिनको अनाज देना है वो अनाज के अपने अलग क्षेत्र बना दिया गया वहां अपना अनाज डाल दें, जिनको दूध देना है वो दूध दे दें, जिनको अपनी सब्जियां देनी है अपनी सब्जियां दे दें। इस तरह से अलग अलग बना दिए गए कि वहां ला करके आप अपनी चीजें दे सकते हैं। तो ठीक है चलिए सब कुछ होने लगा, लोग ला ला करके देने लगे। तो सुबह से जब शाम हो गई तो एक चीज को खोला गया, मतलब वो एक ड्रम आप समझ लीजिए रखा गया था जिसमें लोगों से कहा गया था कि अगर आपके पास दूध है तो आप इसमें अपना ला करके दूध डाल सकते हैं। तो दोस्तों जब उस दूध के ड्रम को या बर्तन को जो भी आप कह लीजिए खोला गया तो देखा गया कि उसमें दूध की जगह पानी भरा हुआ था, पानी ही पानी था। ऐसा कैसे हुआ? जब राजा को बताया गया कि ऐसा हुआ है कि जब हर व्यक्ति दूध ला ला करके उसमें डाल रहा है और उसकी जगह पर पानी है तो ये गड़बड़ी कहां हुई? क्या राजा के जो काम करने वाले कारिंदे हैं उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है या लोगों ने गड़बड़ी की है या क्या हुआ है? तो मंत्री को जिम्मेदारी दी गई कि भाई इसका पता लगाया जाए और जब मंत्री ने पता लगाया तो उसका निष्कर्ष ये था कि गांव का हर व्यक्ति यह सोच रहा था उस समय कि यार सब तो राजा की लड़की की शादी है तो सभी तो ले जा करके दूध डालेंगे, मुझे भी दूध डालने की ही जिम्मेदारी दी गई है या मेरे पास भी दूध होता है मैं उसमें डालूंगा तो मैं अच्छा होगा कि मैं दूध की जगह एक लोटा पानी ले जाता हूं क्योंकि बाकी लोग तो दूध डालेंगे। तो जब बाकी लोग दूध डालेंगे उतना सारा दूध होगा तो उसमें मेरा यह एक लोटा पानी खप जाएगा तो मैं क्यों बेकार के अपना दूध वहां बर्बाद करूं, राजा को किस बात की कमी है। मजेदार बात है कि जो बात यह एक व्यक्ति सोच रहा था यह बात उस नगर के हर उस व्यक्ति ने सोचा जिसे दूध देना था, मतलब हर व्यक्ति यही सोच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति खुद के लिए तो पानी की बात सोच रहा है कि मैं पानी डाल दूंगा, लेकिन दूसरों के लिए सोच रहा है कि यार वो तो दूध डालेंगे तो मेरा पानी इतना खप जाएगा। जब सब ने यही बात सोची तो नतीजा यह निकला कि वो जो ड्रम था वो पानी से भर गया, उसमें दूध का नामो निशान नहीं था, और राजा की आंखें खुल गई कि आपकी प्रजा आपको कितना चाहती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, बचपन में हम लोगों ने सुनी थी और इस कहानी ने बहुत अपील भी किया था। अब आप देखिए कि इसमें मैसेज क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैसेज इसमें जो मैंने अपने लिए ग्रहण किया वह है दायित्व बोध का, कि मुझे कोई एक दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को या तो मैं सीधे सीधे निभा लेता हूं, मैं अगर निभा लेता हूं तो देखिए मेरे दिमाग पर कोई दबाव, कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं होती, मुझे कोई उसके लिए टोटके नहीं सोचने पड़ते, मुझे कोई दिमाग में षड्यंत्र नहीं लाना पड़ता कि मैं इससे कैसे बचूं। अगर मैंने फैसला कर लिया कि मेरा यह दायित्व है और मुझे इस दायित्व को निभाना है तो बात खत्म हो गई, मेरे लिए जीवन का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब मैं उससे बचने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग को तिकड़म ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कि यहां तिकड़म ढूंढा गया, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मैं अपने दायित्व से तो अपने आप को बचाता हूं और अप्रत्यक्ष रूप से अपना दायित्व तो दूसरों के ऊपर डाल देता हूं कि यार वो तो कर ही रहा होगा तो मुझे करने की क्या जरूरत है, वो कर रहा होगा मुझे करने की क्या जरूरत है, और नतीजा क्या निकलता है कि वह काम होता ही नहीं और मैं भी एक्सपोज हो जाता हूं, मेरी भी ईमानदारी सामने आ जाती है कि मैं कितना ईमानदार हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह न सोच करके दूसरा इसके बारे में क्या करेगा, हमें केवल यही सोचना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या करेंगे, और जो करेंगे वो यह कि जो कहा गया है वह करेंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का जिक्र अभी करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, और दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सब उद्देश्य भी समझ गए होंगे। आज 9 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से राष्ट्र को संबोधित किया है ना, ये लगातार जब से कोरोना वायरस का यह संकट चला है प्रधानमंत्री जी का यह तीसरा संबोधन था, और आज का जो संबोधन था एक प्रकार से धन्यवाद ज्ञापन करने का संबोधन था कि किस तरीके से जनता इसे हाथों हाथ ले रही है। दोस्तों, यहां जो मैंने ये विषय उठाया है सिर्फ एक दो कारणों से। पहला तो यह है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, अभी हमें यहां न तो राजनीतिक दृष्टि से सोचना चाहिए, न व्यक्तिगत दृष्टि से सोचना चाहिए, पद की दृष्टि से सोचना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपकी पसंदगी नापसंदगी हो सकती है, लेकिन जो पद उनके पास है प्रधानमंत्री का वह है, तो वो जो कह रहे हैं सीधी सी बात है कि हमें बिना किसी दिमाग में कोई और तिकड़म लाए हुए केवल एक बात लानी चाहिए कि हमें फॉलो करना है, और जो फॉलो करने का काम होता है मित्रों वो सबसे आसान काम होता है, हमें उनसे फॉलो करना चाहिए। जब मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं तो उसमें प्रशासन भी शामिल है, क्योंकि प्रशासन भी ऊपर से ही आदेश ले रहा है, यानी कि हमें अपने दिमाग को अभी ज्यादा न भटका करके सीधे उन बातों में लगाना चाहिए जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है। हम ये ना सोचें कि अरे दूसरे तो कर रहे होंगे तो मैं ही अगर निकल जाऊंगा शहर में तो क्या होगा, मेरे निकलने से ही तो भीड़ नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज आप देखिए कि किसी न किसी को तो आखिर में ये वायरस लग ही रहा है, और संख्या बढ़कर के 2000 तक हो गई है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दूसरों को भले हो जाए यार मुझे नहीं होगा, चलो हम ये लिबर्टी ले लेते हैं, चलो ये लिबर्टी ले लेते हैं, 130 करोड़ की आबादी है उसमें तो केवल 2000 को ही हुआ है तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, तो चलिए हम थोड़ा सा उल्लंघन भी कर देते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह भी सोचना गलत है, अगर दूसरे को हुआ है तो हमें भी हो सकता है, और अगर आप जिसको हुआ है जाकर के पूछें तो वह भी मेरी तरह से ही सोच रहा था कि मुझे नहीं होगा, लेकिन उसको हो गया। तो सीधी सी बात है कि अभी एक ऐसे अवसर में है, हम हैं एक ऐसे दौर में है जबकि हमें अपने दायित्व को ही अपना धर्म समझ लेना चाहिए और उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। दोस्तों, इसी को ध्यान में रख करके मैंने ये कहानी आप सबको सुनाई है। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब फिर और किसी विषय पर बात करेंगे। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब सुरक्षित रहें, आप सब स्वस्थ रहें, सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।